मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 22 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी पुष्कर कुमार गुप्ता का, जो पूर्णिया बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च की होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं सही उत्तर तक पहुंच, खासकर प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए दूसरी घटनाओं को हम देख लेते हैं। न्यूज़ में आपने सुना होगा, रेडियो न्यूज़ में, कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को मंजूरी दे दी है और अब वहाँ पंचायतों के चुनाव होंगे, जो बहुत लंबे समय से एक तरह से बंद से पड़े थे। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको स्मरण कराना चाहूँगा। आप जानते ही होंगे हमारी जो पंचायत की व्यवस्था है, देखिए ये रूरल सिस्टम है ना, इस पंचायत की व्यवस्था के 3 हिस्से हैं। जब हम अर्बन एरिया में आते हैं तो अर्बन एरिया में तो आप जानते हैं म्यूनिसिपल और आपकी नगर पालिकाएँ हैं और ये सब आ जाती हैं, है ना, नगर निगम है। लेकिन जो हमारा रूरल लोकल सिस्टम है उसको त्रिस्तरीय बनाया गया, इसीलिए इसका नाम है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। और जब हम पंचायत की बात करते हैं तो उसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से ही होता है। इसमें 3 लेवल बनाए गए हैं। जो पहला लेवल है वो ग्रास रूट का है, गांव का है। गांव स्तर पर बकायदे ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो ब्लॉक लेवल का होता है। ब्लॉक लेवल के बारे में आप जानते होंगे, उसमें कुछ गांव शामिल होते हैं। खासकर जब हमारे देश में विकास की योजनाएं शुरू की जानी थी कि भाई हम अपने देश का विकास कैसे करेंगे, तो गांव बनाए गए। इसके बाद कुछ गांव को मिलाकर के ब्लॉक बना दिए गए, जिसे खंड कहते हैं, या सही नाम है उसका डेवलपमेंट विकास खंड, डेवलपमेंटल ब्लॉक। इस लेवल पर जो बनाए गए, जो चुनाव होते हैं, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, उन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। कहीं ये मंडल परिषद कहलाते हैं, कहीं ये ब्लॉक समिति कहलाते हैं, लेकिन इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है पंचायत समिति। तो जब पंचायत समिति कहते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये ब्लॉक लेवल का है, ये ग्राम पंचायत का नहीं, क्योंकि सभी में पंचायत शब्द आपको मिलेगा। खासकर इसी को क्लियर करने के लिए मैं ये बात रख रहा हूँ। इसके बाद जो टॉप लेवल पर है इसके, वो है जिला पंचायत या जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चाहे वहां नगर निगम काम कर रहे हो, चाहे वहां नगर पालिका काम कर रहे हो, लेकिन जिला पंचायत या जिला परिषद अलग से होते हैं। इनमें जो हमने दोनों की बात की, इनके सदस्य होते हैं, और बेसिकली इसमें जो बीच का है मंडल परिषद, जो ब्लॉक लेवल पर है, ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत इनके बीच में लिंक का काम करता है, लिंक का, ताकि जिला स्तर पर जो काम हो, निर्णय लिए जाएं, वहां पंचायतों की क्या आवश्यकताएं हैं वो सीधे सीधे वहां तक पहुंच सके। तो इस तरह से ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में 2 छोटी-छोटी खबरें हैं, वो आप लोगों के नॉलेज में मैं लाना चाहूंगा। एक तो यह है कि जो हमारे शोध संस्थान है, उस शोध संस्थान के बारे में एक आंकड़ा आया है कि विश्व में जो शोध संस्थान है उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत है वो 25% है, वैश्विक प्रतिशत, लेकिन भारत में यह 16% है। शोध संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ, 16% टोटल श्रम में। आपको मैंने इससे पहले आंकड़ा बताया था, आप ध्यान कर याद करने की कोशिश कीजिए, 20% था, जो लगभग लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन शोध संस्थानों में 16% है, जिसे आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते। और वैसे भी जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 108वां है, कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि जो वीमेन एम्पावरमेंट है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, तो आपको खासकर महिलाओं से संबंधित अगर कहीं भी इस तरह की जानकारी मिलती है तो आपको नोट कर लेना चाहिए और उसे बार बार रिवाइज भी करिए ताकि आप उसका यूज़ कर सकें। आज के अखबारों में, एक दो अखबारों में इस तरह की खबरें छपी हैं कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो उपभोक्ता कानून है उसके अंतर्गत लाया जाए या नहीं लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक याचिका स्वीकार कर ली है, और जो इसके विपक्ष में जो दलील दी जा रही है वो ये है कि देखिए, जो एजुकेशन है वो कोई न तो वस्तु है और न कोई सर्विस है, और ये बात इससे पहले बकायदे सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, चीज़ें बदलती रहती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका स्वीकार कर ली है, देखते हैं कि क्या निर्णय आता है। लेकिन आपकी जानकारी में यह होना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता कानून एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अपडेट रहने के लिए मैंने आपके ध्यान में ये बात ला दी है कि कभी अगर आपको इससे संबंधित कोई खबर पढ़ने को मिले तो आपको उसे पढ़ करके अपने को अपडेट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आता हूँ सही उत्तर तक पहुँच। इनफैक्ट आप लोग बार बार मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर में एक शब्द सुनते होंगे, क्षमता का निर्माण। यानी कि मैं ये सीधे सीधे कहता हूँ कि मैं जो डेली ऑडियो लेक्चर का पर्पस है वो आपको सूचनाएं देना नहीं है, बल्कि आपके अंदर क्षमताओं का निर्माण करना है। ये जो क्षमताओं का निर्माण है, इसे आप प्री से भी जोड़ सकते हैं, मेन से भी जोड़ सकते हैं, जोड़ना ही चाहिए, और इंटरव्यू से भी जोड़ सकते हैं। यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी आप सोचेंगे कि किताबों को रट करके हो जाएगी, किताबों में जो तथ्य दिए हुए हैं उनको पढ़ करके हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको इसे दुरुस्त कर लेना ही चाहिए, समय रहते कर लेना चाहिए, और जितनी जल्दी आप इसे दुरुस्त कर लेंगे उतनी जल्दी आप सफलता हासिल कर लेंगे। इसे ही मैं कहता हूं क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण का मतलब है कि आपने किताबों में वो बातें नहीं पढ़ी हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पेपर में है, वो बातें नहीं पढ़ी हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बातें यहां पेपर में है, एग्जामिनेशन के पेपर में है, वो आपने पढ़ी ही नहीं है। ये आपको थोड़ा सा बड़ा विचित्र सा लग रहा होगा, ये क्या हुआ? देखिए, जब हम किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, सीधे सीधे दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो आपको बताया जा रहा है या जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपके सामने होता है। दूसरा परसेप्शन होता है। परसेप्शन का मतलब है कि आपको बताया नहीं गया है, आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। इसको हम परसेप्शन कहते हैं। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो बेसिकली परसेप्शन पर बेस्ड एग्जामिनेशन है। लेकिन याद रखिए कि ये जो परसेप्शन है ये तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हवा में परसेप्शंस नहीं आएंगी, जिसे मैं अपनी भाषा में एक प्रकार से बिटवीन द लाइंस कह देता हूं कि दो लाइन के बीच में जो खाली जगह है वहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ वहां नहीं लिखा हुआ है इनफैक्ट उसी को आप पढ़ सके, जान सके, इसीलिए वहां कुछ लिखा गया है। और अगर आपने बिटवीन द लाइंस की चीजों को पढ़ने की क्षमता विकसित नहीं की तो आप ठीक है, इंफॉर्मेशन आपके पास ढेर सारी है, सूचनाएं तो हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। और यूपीएससी को नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप नॉलेज की थोड़ी सी जरूरत है, परसेप्शन की ज्यादा जरूरत है, सूचनाओं की जरूरत नहीं है। और मोबाइल के जमाने में तो वैसे ही सूचनाओं की जरूरत नहीं है, आप गूगल महाशय से कुछ भी पूछ लीजिए वो तुरंत बता देंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न भी है, जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न तो वही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। वो आपकी स्मरण शक्ति को चेक नहीं करता कि आपको कितनी सारी चीजें याद है, नॉट एट ऑल। वो तो ये केवल जानना चाहता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है उसके आधार पर हम आपको कुछ एक तरह से केस स्टडी ही कह लीजिए वो दे रहे हैं, और देखिए कि आप इस केस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इस केस को सॉल्व करने के लिए सीधे किसी किताब का सहारा लेंगे तो वो किताब आपकी डायरेक्ट मदद नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट जरूर मदद करेंगे। ये कैसे इनडायरेक्ट मदद करेंगे? दोस्तों, इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं जो इस बार के 4 अक्टूबर के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, मैं अभी ये केवल विचार करने के लिए आपको दे रहा हूं। आप लोग इत्मीनान से मेरी बात सुनिए, आपके पास अनसॉल्व पेपर होंगे, अनसॉल्व पेपर में जाकर के देखिए और इस पर विचार कीजिए। विचार इस रूप में कीजिए, अगर आपकी इस टॉपिक पर तैयारी है तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का है, इसे आप एग्रीकल्चर से भी जोड़ करके देख सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली इसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन मानता हूं। आप क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, ये एक दूसरे से ना काफी कुछ मिलते जुलते से हैं, तो आप इनमें शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो मैं इसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन मानता हूं। हो सकता है कि आप इसे एग्रीकल्चर का माने, और आप अगर एग्रीकल्चर का मानते हैं तो आप गलत नहीं है। प्रश्न सुन लीजिए, समीक्षा हम लोग कल करेंगे अगर कुछ दूसरी बड़ी घटना नहीं हुई तो, अदरवाइज भी कभी न कभी इसकी समीक्षा करेंगे। मैं जो प्रश्न पढ़ रहा हूं ये मेरे पास डी सेट है, सेट डी है, और उसका है क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर वन, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। नंबर टू, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा कथन, पिछले तीन दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, मतलब ये दालों के ऊपर है। इसके बाद दिया हुआ है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है, हैं राइट, ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो, डी एक दो और तीन, राइट। दोस्तों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस डेली ऑडियो लेक्चर को बहुत से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी सुनते हैं, तो मैं क्वेश्चन को जल्दी से इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, इस पर हम लोग फिर आगे बात करेंगे। विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रवि क्रॉप। सेकेंड, ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। थर्ड, In the last three decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. Which of the statements given above is oblique are correct? A. Only one. B. One and three only. C. Two only. D. One, two and three. Ab aap इसे अपने ढंग से समझने की कोशिश कीजिए और एक काम कीजिए कि इनके जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आप देखिए कि क्या सही में ये जो स्टेटमेंट है ये सीधे सीधे किसी किताब में है, क्या एनसीईआरटी की किताब में सीधे ये स्टेटमेंट है, या आप ज्योग्राफी की जो दूसरी किताबें पढ़ी होंगी आपने क्या उनमें स्टेटमेंट ये हैं, या आप नोट्स से पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी के आजकल तो बाजारों में नोट्स भी बिकने लगे हैं, तो क्या उन नोट्स में ये स्टेटमेंट हैं, कहाँ है ये स्टेटमेंट, ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर ये स्टेटमेंट मिल जाते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर सवाल ये है अब आप हल करेंगे कैसे। तो दोस्तों, चूंकि आज वक्त हो चला है, मैं अब इस पर बहुत संभव है कि कल बातें करूं और इसके आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनफैक्ट सही मायने में जिसे क्षमता निर्माण कहा जाता है वो क्या होता है। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं, राहुल पाटीदार शिवा गुर्जर उत्तराखंड से और अर्पित चतुर्वेदी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्त, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।